नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। 21वीं सदी के पहले 25 वर्षों में एक तरफ दुनिया भर के तमाम देशों और उसमें रह रहे लोगों और समाज ने न जाने कितने मुकाम हासिल किए, लेकिन इसी दौरान भारत भीड़, झूठ, प्रपंच, अंधभक्ति और बाजार का पर्याय नजर आया। कॉलम अपन तो कहेंगे में इस बार मेरे विचार का शीर्षक है 25 वर्षों का भारत चिट्ठा। 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष, ये ढाई दशक मानवता की अमूल्य अविस्मरणीय अवधि के थे। इसमें मनुष्य के हाथों मनुष्य समतुल्य कृत्रिम बुद्धि यानी AI बनी तो अंतरिक्ष ब्रह्मांड को भेदने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना। तब पृथ्वी के सर्वाधिक आबादी वाले भारत में क्या बना? भीड़ और उसकी आवाजाही या कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसी से फैला बाजार। ध्यान रहे 20वीं सदी के आखिरी दशक में PV नरसिंह राव नाम का प्रधानमंत्री भारत को प्राप्त हुआ था। वह बुद्धि और दृष्टि लिए हुए था, सो उन्होंने नौकरशाहों के समाजवाद यानी पूंजी कोटा परमिट से भारत को मुक्त कराया। मंत्रालयों में पूंजी उद्यम पुरुषार्थ के चक्कर खत्म कराए। उन दिनों चीन में डेंग शियाओपिंग ने जहां देशी विदेशी पूंजी शिक्षा ट्रेनिंग मेहनत से देश को गढ़ने में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को धार दी थी, तो नरसिंह राव मनमोहन सिंह ने भी भारत में अवसर खोले थे। राव सरकार ने बतौर मानव संसाधन लोगों को समर्थ बनाने के फैसले लिए। हालांकि उनसे पहले VP सिंह ने मंडल मस्जिद में समाज को भीड़ बनाने के विषाणु फैला दिए थे। तभी लालू यादव, मुलायम सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी की आरक्षण धर्म की आग फैली थी। उसी का असर था जो 21वीं सदी की मिलेनियम पीढ़ी की दिशा बिगड़ी। नौजवान या तो IT क्षेत्र के बैंक ऑफिस कुलीगिरी की तरफ दौड़े या आरक्षण की भूख में अंधे होकर सरकारी नौकरी की माया में भटके। मेरा मानना है कि समाज के भटकने के संग अर्ध साक्षरता की शिक्षा का अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का सर्व शिक्षा अभियान वह दूसरा मोड़ था, जिससे पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा से मिलेनियम पीढ़ी की बर्बादी बनी। सरकारी स्कूलों का भट्ठा बैठा, प्राइवेट शिक्षा से शिक्षा असमानता बनी। शिक्षा का कुल नतीजा बुद्धिविहीन IT कुलियों, सरकारी नौकरियों की भूख, कुशलता कौशल के नाम पर बेगार करती नौजवानों की भीड़ थी। न खेती व परंपरागत कौशल में प्रवीण और न पहले जैसे काबिल इंजीनियर डॉक्टरों का शिक्षण, सो जनरेशन दुकान गुमटी धंधों में खपी। इसी के ट्रेंड को बूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकला था कि दफ्तर के बाहर पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। मतलब नरसिंह राव मनमोहन सिंह बनाम नरेंद्र मोदी का बेसिक फर्क यह भी है, जो राव वाजपेयी मनमोहन सिंह ने भूमंडलीकरण, वैश्विक ट्रेंड में उत्पादकता, औद्योगिक उत्पादकता, IT सेवा क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनवा 21वीं सदी के सिनेरियो में दिमाग खपाया, वहीं नरेंद्र मोदी ने चाय पकौड़े की गुमटी यानी व्यापार धंधा मुनाफे में भारत का भविष्य बूझा है। यह उनका दोष नहीं है, गुजरात की तासीर में विकास मतलब व्यापार धंधा दुकान वाणिज्य से मुनाफे की सर्वोच्चता से ही सब है। इसी कारण अंबानी अडानी प्रतिमान है, बाकी सब जाए भाड़ में और धंधा मुनाफा ही परम पुरुषार्थ। सोचे पिछले 3 वर्षों में अंबानी रिलायंस ने यूक्रेन संकट में रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद उसे देश दुनिया को कितना महंगा बेचा, अरबों खरबों रुपए का मुनाफा कमाया होगा। अब यदि इस धंधे से भारत ट्रंप के टैरिफ का मारा है तो अंबानी रिलायंस का तो कुछ नहीं बिगड़ना है, मगर देश मोदी सरकार के लिए तो अंबानी सफलता की कहानी है। विषयांतर हो रहा है, मूल बात पर लौटे। भारत ने 1990 से 2000 के बीच अपने इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की भूमिका निभाई। नरसिंह राव मनमोहन सिंह ने हाईवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, संचार व बिजली क्षेत्र को नौकरशाही जकड़न से मुक्त किया, निज पूंजी उद्यम को स्वतंत्रता दी। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण शुरू हुआ तो उससे 21वीं सदी के 25 वर्षों की सतत कोशिश से भारत को क्या प्राप्त है? कह सकते हैं कनेक्टिविटी और बिजली का उजाला है, अर्थात हाईवे के नेटवर्क, संचार, आवाजाही, माल ढुलाई, ऊर्जा में सुगमता है। जैसा भी हो पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। ऐसा होना मोदी सरकार से नहीं है, उसका योगदान सरकारों की निरंतरता की मौजूदा कड़ी के नाते है। संयोग था जो नरसिंह राव के सुधारों के बाद की सरकारों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभारी मंत्री कामकाजी हुए। वाजपेयी सरकार के भुवन चंद खंडूरी हो या कांग्रेस के कमलनाथ, CP जोशी या नितिन गडकरी से भारत हाईवे नेटवर्क में गुथा गया है। इन सभी मंत्रियों ने नौकरशाही को सख्ती से कसते हुए काम निकालने की धुन में काम किया। ध्यान रहे कांग्रेस ने ही अडानी को पहला बंदरगाह दिया था, ऐसे ही उसने दक्षिण भारत की कंपनियों को हाईवे, एयरपोर्ट, बिजली घर बनाने के काम सौंपे थे। सरकारों की प्राथमिकता से ही 25 वर्षों का इंफ्रास्ट्रक्चर लेखा है। अब सवाल है कि जिस असल काम के लिए बुनियादी ढांचा बना उसका क्या हुआ? क्या भारत में कारखाने खुले, निर्यात बढ़ा, भारत की उत्पादकता बढ़ी, औद्योगिक क्रांति हुई, भारत आत्मनिर्भर बना। ऐसा न होना 25 वर्षों के भारत चिट्ठे की असलियत है। किसी भी अर्थशास्त्री से पूछें, किसी भी विकसित देश की गाथा पढ़ें, तो मालूम होगा कि जब भी किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो उस देश में फैक्ट्रियां खुली, रोजगार बढ़ा, उत्पादकता बढ़ी, निवेश आया और निर्यात बढ़ा। उसी से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत भी निकली। 25 वर्षों में भारत में उल्टा हुआ, औद्योगिकरण नहीं हुआ, उल्टे 140 करोड़ लोगों की भीड़ से भारत व बाजार बना, जिसके हाईवे, बंदरगाहों, एयरपोर्ट, कम्युनिकेशन ने चीन में बने सामान की माल ढुलाई को आसान बनाया। अंबानी अडानियों को शॉपिंग मॉल बनाकर बंदरगाह विकास कर चीन वियतनाम से टर्बाइन या सोलर मशीनरी आदि हर सामान लाकर भारत में खपाने, लगाने, बेचने का धंधा चोखा बना। सो इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत का औद्योगिकरण नहीं है, मगर बाजार फैला है और लागत वसूली है। लोगों की कनेक्टिविटी बनी तो उसके साथ 140 करोड़ से ही टोल टैक्स, हवाई टिकट, फोन बिल की मनमानी वसूली का रिवाज कायदा है। एयरपोर्ट बंदरगाह क्षेत्र में अडानी और इंडिगो बने। फोन संचार पर जियो एयरटेल की एक छत्रता हुई। बिजली में अंबानी अडानी सहित कोलकाता हैदराबाद की पावर कंपनियों की सरकारी ढांचे के जरिए मनमानी बिजली रेट बिल बने हैं। सन 2000 से पहले भारतीयों के अनुभव में बिजली न होने या कटौती की शिकायत होती थी। अब घर घर की शिकायत है कि बिजली पानी के कितने ज्यादा बिल आ रहे हैं। सो उपयोग और कंपनियों की कमाई का वह चक्र है जिसमें न सस्ता है, न स्वदेशी है, न स्वावलंबी भारत है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तमाशा है। नतीजतन एक्सप्रेसवे, हाईवे, स्टेट रोड आदि की दशा, इनके किनारे वही दशा है जो 2000 से पहले पटना से मुजफ्फरपुर जाते वक्त थी। एक उदाहरण बिहार के हाईवे का है। बिहार के विकास गौरव का प्रतीक पटना में गंगा किनारे यानी राजधानी से बाहर निकलने प्रदेश के सभी रास्तों पर ले जाने के रास्ते का मरीन ड्राइव यानी जेपी गंगा पथ है।
पर यह किससे पटा हुआ है? गुमटियों व ठेलों की दुकानों से।
मैं बतौर रिपोर्टर 1984 में पहली बार जब पटना से मुजफ्फरपुर गया तो सड़क किनारे की गुमटियों की संख्या, निठल्लों की अड्डेबाजी, चाहे छोटे सिंघाड़े यानी समोसा का मिला नजारा मेरे लिए मनभावक था। 40 साल बाद उसी नजारे की कहानी जेपी गंगा पथ है। जेपी गंगा पथ का किनारा ठेलों, गुमटियों से भरा हुआ है। कहते हैं शाम को पांव रखने की जगह नहीं होती। तब और अब के विकास के फर्क का गौरतलब पहलू यह है कि जेपी गंगा पथ की गुमटियों में अब सिंघाड़े की बजाय मोमोज, चाउमीन, पिज्जा जैसी वे चीजें मिलती हैं जो देसी पकौड़ों से बढ़कर है। यह उदाहरण 21वीं सदी के 25 वर्षों की भारत प्राप्ति का एक सार है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना है पर फैक्ट्रियां नहीं है, तो है क्या? जवाब है बाजार। दिल्ली में करोल बाग का मंडे बाजार देखें या गंगा पथ हाईवे की गुमटियों से टाइम पास या दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के किनारे में चमक धमक पंचतारा देसी विदेशी ब्रांड की आधुनिक गुमटियों के ठिकानों पर जमा भीड़ से साफ झलकेगा कि बाजार ही भारत का विकास है। भीड़ और बाजार के लिए बंदरगाहों से लेकर दिल्ली, कोलकाता, यूपी, बिहार के सभी हाईवे का उपयोग या तो लोगों की आवाजाही के लिए है या चीन, वियतनाम, आसियान व अन्य देशों से हो रहे आयात की माल ढुलाई का है। सो भारत सिंघाड़ा यानी समोसा बनाना छोड़ रहा है क्योंकि भीड़ का स्वाद चाइनीज, इतालवी, अमेरिकी हो गया है। इसलिए भारत के छोटे छोटे सभी उद्यमी विदेशी चीजों के व्यापारी बन गए। मकसद भीड़ को दुहना है। विदेशी कंपनियों के निर्मित सामान, प्रोडक्ट, तकनीक, ब्रांड का डीलर बनना है। स्टील, सीमेंट से लेकर संचार सभी क्षेत्रों में मोनोपोली बनाना है। और यही जेपी गंगा पथ की भीड़ के दिमाग में विकास है, विकसित भारत है। तभी वह इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी में गंगा किनारे मोमोज खाते हुए रील बनाता है, दोस्तों, रिश्तेदारों, दुनिया को दिखलाता है, अमेरिकी कंपनियों की कमाई बढ़वाता है और भक्ति भाव से मोदी जी को पूजता है। उसके दिमाग में और कुछ नहीं सूझता। आखिर मिलेनियम पीढ़ी, नौजवान आबादी की जिस धुन रीलों में भारत रमा है, वह वाजपेयी सरकार के सर्व शिक्षा अभियान से निर्मित खोखा छाप साक्षरता से जो बने हुए हैं। उस नाते यह सोचना गलत नहीं है कि वाजपेयी सरकार ने जहां शिक्षा बुद्धि विहीन अंगूठा छाप युवा भीड़ पैदा की, तो वही 21वीं सदी में भीड़ में कन्वर्ट है जो साथ साथ सहज भाव भक्त भी है। सोचे 21वीं सदी के जिन 25 वर्षों में मानवता से कृत्रिम बुद्धि यानी AI और अंतरिक्ष के हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ठीक उसी अवधि में भारत का भीड़, बाजार और भक्ति निर्माण है। सत्य, विवेक, बुद्धि खत्म या भ्रष्ट है और आत्मनिर्भरता पैदे में। वह मनुष्य चेतना, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत खुददारी भी लुप्त है जो 20वीं सदी के 1901 से 1925 के मध्य हिंदुस्तान के लोगों को प्राप्त हुई थी। इतिहास खंगाले, याद करें 1905 के बंग भंग से पहले और बाद के अंग्रेज शासन में स्वतंत्रता, खुददारी, स्वदेशी स्वराज के हिंदुओं में कैसी चेतना बनी थी, बुद्धि का तब कैसा विस्फोट था। हिंदुस्तानी भाषाओं, कला, संगीत, साहित्य का वह स्वर्ण युग था, तो विज्ञान से वकालत में प्रोफेशनल श्रेष्ठता थी। वह समय अरविंद, तिलक, गोखले, गांधी, सावरकर, हेडगवार, टैगोर, प्रेमचंद, जेसी बोस, रामानुज, मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद जैसी उन हस्तियों का था जो या तो ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों से या अंग्रेज शिक्षा व्यवस्था की कठोरता, अनुशासन या फिर पश्चिमी विचारों के प्रभावों के वजह से खिली थी। 1901 से 1925 के 25 वर्ष भारत में बौद्धिक राजनीतिक पुनर्जागरण के थे। लोग क्रांति, साहित्य, विज्ञान और आत्मिक बौद्धिक राजनीतिक चेतना के व्यक्तित्वों से संपन्न थे। और ताजा गुजरे 25 वर्षों में क्या प्राप्त हुआ? झूठ, भीड़, बाजार, भक्ति और पराश्रित जीवन की कनेक्टिविटी लिए हुए भारत। इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड का करें इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।